अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 60
यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः।
अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवद गीता का अध्याय 2, इसके पहले के श्लोक में अर्थात 59 उसमें भगवान क्या कहते हैं। भगवान दिव्य रस की बात कहे हैं 59 में, कुछ स्मरण में है क्या कहे भगवान। दिव्य रस भगवान कहते हैं, दिव्य रस की प्राप्ति से भौतिक रस का जो भौतिक रस के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो गया। अर्थात भौतिक भोगों के प्रति, भौतिकता में तो कोई रस है नहीं, भौतिक भोगों को रस नहीं बोला गया, भौतिक विषयों को भोग कहा गया। और जो दिव्य रस है, दिव्यता है, उसको रस कहा गया है। तो भगवान इसके पहले के श्लोक में हमको बताए, क्या बताए कि भौतिक भोगों से यदि अपने आप को बचाना चाहते हो तो रोज क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास दिव्य रस पीना पड़ेगा। है दिव्य रस कैसे बनाते हैं उसका वर्णन हुआ है पिछले एक महीना पहले के क्लास में, सबको याद है रेसिपी, भूल गए क्या रेसिपी भूल गए। तो उसका रेसिपी कैसा है पिछले समय बताया गया था किस प्रकार से दिव्य रस बनता है। तो दिव्य रस का रोज आस्वादन करें, रोज दिव्य रस का आस्वादन करने से भौतिक भोगों के प्रति जो आसक्ति है, जो चंचलता है, वह चंचलता कम हो जाती, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। तो परंतु यहां पर एक बहुत महत्व का प्रश्न इस श्लोक में है, वो क्या है? इसमें यह है कि यदि कृष्ण भक्ति का उच्च कोटि का यह जो रस है और ये रस यदि प्राप्त न हो, सब कहेंगे भाई हवा हमको तो प्राप्त नहीं हो रहा है। मान लो ये उच्च कोटि का रस प्राप्त नहीं हो और भौतिकता के प्रति आकर्षण बना रहे तो उससे क्या होता है? इस श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान कहे कि यदि दिव्य रस का प्राशन करते हैं तो भौतिक भोगों से हम अभिष्ट रह सकते हैं। भौतिक भोग जो है वो हमको हैरान नहीं करेंगे, भौतिक चंचलता जो है वो हमको हैरान नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से माया का रूप हमारे सामने प्रकट होके हमको नचाएगा नहीं। अभी होता क्या है, किसी को भी कोई भी जीव को भोग अर्थात इस संसार का कोई भी विषय वस्तु का कोई भी रूप क्या करता है, हमारे सामने प्रकट होता है और हमको नचाने लगता है, हम नाचने लगते हैं उसके अनुसार, ऐसा बताया गया है। भौतिक रस ये नाचना हमारा कब बंद हो जाएगा? ये माया ट्यून बजाती है और हम उसके ऊपर डांस करते हैं, नाचते हैं, लेकिन कभी अचानक कोई भी आता है बोलता है बहुत अच्छा सिनेमा लगा है थिएटर में, चले इतना बड़ा हमारा क्रिएटिव एनर्जी, इतनी बड़ी क्षमता है हमारे पास, लेकिन 4-6 घंटा नाचने लगे माया के दिल के। तो इस प्रकार से ये माया हमको तब तक नचाएगी जब तक हम दिव्य रस का आस्वादन नहीं करते। 59-59 श्लोक में भगवान ने यह बताया था। लेकिन अब प्रश्न ये होता है कि मान लो दिव्य रस मिल ही नहीं रहा है, रेसिपी भी पता है कैसे बनता है, यह भी पता है कहाँ रखते हैं, यह भी पता है कैसे पिया जाता है, विधि भी पता है, उससे क्या होता है यह भी पता है, अब प्रॉब्लम क्या है? मान लो फिर भी नहीं मिल रहा है, ऐसी कौन सी अवस्था हो सकती है जिस अवस्था में ये रस नहीं मिल रहा है? रस कितना आसान है बनाना, रस की विशेषता क्या है, ये सब चर्चा हो चुकी है, पर फिर क्यों प्राप्त नहीं होगा ये रस हमको क्यों प्राप्त नहीं होगा, क्या कारण हो सकते हैं रस प्राप्त नहीं होने? बारिश, गर्मी, ठंडी, गाड़ी बंद है, रिक्शा बंद है, ऑफिस लेट हुआ, ट्रैफिक जाम है, ऐसे नहीं अनेक भौतिक संसार में यह आध्यात्मिक रस नहीं पीने के इतने कारण हमको मिल सकते हैं कि पूरे जीवन भर ये कारण हमको इस रस से वंचित रख सकते हैं। ये शुक्रवार को बारिश हुआ, अगले शुक्रवार को ट्रैफिक जाम, उसके अगले शुक्रवार को तबीयत खराब, उसके अगले शुक्रवार को ट्राई, उसके अगले शुक्रवार को बस इच्छा ही नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आलस्यम, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक में हमने बहुत पहले भी देखा है, क्या कहा है, शीतोष्ण सुख दुख रहा, भौतिक संसार का कोई भी विषय हमारे आध्यात्मिक सेवा के बीच में नहीं आना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक कार्य के बीच में भौतिक संसार का कोई भी विषय नहीं आना चाहिए, कोई भी अर्थात कोई भी, ये नहीं कि ये तो चल जाएगा वो तो चल जाएगा ये तो ऐसा वो तो, नहीं नहीं नहीं। परंतु फिर भी भगवान यहां पे इस श्लोक में यही बताने का प्रयास कर बता रहे हैं, क्लियरली बता रहे हैं भगवान, वो कहते कि मान लो ऐसी अवस्था में भी यदि आप उस दिव्य रस को प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम लोग किसी को हम कहे प्रभु जी ले लो एक ग्लास, वो थोड़ा बहुत दिव्य रस का आस्वादन किया कीजिए, तो कोई हमको तुरंत बोले नहीं किया तो क्या होगा, नहीं करेंगे हम क्या होगा। तो भगवान पहले श्लोक में बताया दिव्य रस का आस्वादन करने से भौतिक आसक्ति दूर होती है, इस श्लोक में बता रहे हैं यदि नहीं करोगे तो क्या होगा, सुनो, यदि दिव्य रस का आस्वादन नहीं करोगे तो अभी देखो क्या होगा, सुनो अच्छे से ध्यान। तो इसके उत्तर में भगवान बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि उसकी चंचल इंद्रिया, जो व्यक्ति इस दिव्य रस का आस्वादन नहीं करता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जो व्यक्ति इस दिव्य रस का आस्वादन नहीं करता उसकी चंचल इंद्रिया, जो कि इंद्रिय है ये बहुत चंचल है, उसकी चंचल इंद्रिया उसके मन का अपहरण करे, किडनैप, ये इंद्रिय है, टेररिस्ट, भयानक आतंकवादी, फाइव इडियट्स, ये क्या कर देती है, क्या कर लेगी, मन का किडनैप कर लेगी, मन को मन का अपहरण कर लेगी, किडनैप कर लेगी मन को। बताइए यदि हम रोज दिव्य रस का आस्वादन नहीं करेंगे तो रोज क्या होगा, रोज क्या होगा, ये इंद्रिया क्या करेगी, मन का अपहरण, मन को किडनैप करके ले जाएगी, और सब कुछ तो मन ही है, नहीं सब कुछ तो मन ही है ना, बिना मन से कुछ नहीं होगा, और किस प्रकार से अपहरण कर लेगी, केवल किडनैप करके बहुत अच्छे से आराम से रखेगी मन को, ऐसी बात है, किडनैप किया और बड़े ऐसे आराम से रखा है मन को, ऐसे नहीं है, किडनैप करके क्या करेगी, विषय भोग के महातूफान में ढकेल देगी, जो विषय भोग होते भौतिक आसक्तियां, उस विषय भोगों के बड़े भयंकर महाप्रलय में इस मन को ढकेल देगी, उससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बताइए अपने मन को कितने आप होने देंगे, नहीं, यदि होने देंगे तो होगा क्या, कि इसको महाभयंकर प्रलय, विषय भोग के प्रलय में यह इंद्रिया इस मन को ढकेल देंगे, उससे बाहर मन नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि दिव्य रस का आस्वादन नहीं करते हैं तो भगवान इसमें तुरंत इस श्लोक में बता रहे हैं कि चंचल इंद्रिया मन का अपहरण करके उसको विषय भोगों के भयंकर प्रलय में फेंक दे, जिसके बाहर मन कभी जीवन भर नहीं निकल पाए, अनेकों जीवन अनेकों जन्म कट जाएंगे, परंतु मन उस भयंकर प्रलय भयंकर गर्त में फंस जाए, बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए इसके पहले के श्लोक में जो भगवान ने उपदेश दिया है कि क्या करना है, दिव्य रस का आस्वादन करना है, दिव्य रस का आस्वादन करने से ये इंद्रिया मन का अपहरण नहीं करते। कोई प्रोग्राम है क्या बाजू में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अर्जुन ने तो प्रश्न किया था कौन से श्लोक में, कौन सा श्लोक है जिसमें अर्जुन ने चार प्रश्न पूछे,
2.54
उसमें क्या कहते हैं अर्जुन?
शीत दिहि किम आसित
अर्थात
स्थिर बुद्धि वाला किस प्रकार से बैठता है,
स्थिर बुद्धि वाला किस प्रकार से बैठता है, अर्थात वह व्यक्ति किस प्रकार से अपना आसन जमाता है कि जो
ये जो इंद्रिया है, जो महाचोर है, इंद्रिया क्या है, महाचोर है, मन को चुरा लेती है, तो वो चित्त दी वो समाधिस्थ व्यक्ति अपना आसन इस प्रकार से जमा लेता है कि ये इंद्रिया जो है मन को चुराए नहीं, मन को चुरा ही नहीं पाती, भले ही उनका स्वभाव क्या है, चोरी करने का है, मन की चोरी करते हैं, दूसरे की चोरी नहीं करते, मन को चुरा लेते हैं, परंतु वो व्यक्ति क्या करता है, वो इस प्रकार से आसन जमा लेता है, अर्थात वो अपने आप का इस तरह से अपने आप की पोजीशन लेता है, अर्थात इस तरह से अपने आप का स्वाध्याय करता है, सारा संसार जानने के लिए निकले पहले अपने को तो जानो, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, कितना रिसर्च हो रहा है, दुनिया भर की बातें, अनेकों प्रकार का रिसर्च एंड एनालिसिस और संशोधन और ये सब चल रहा है, लेकिन सर्वप्रथम बात तो यह है कि पहले अपने आप को तो जान लो, संसार को बाद में जानते बैठेंगे, यदि हम अपने आप को ही ठीक से नहीं जाने तो दूसरे किसी वस्तु विषय या व्यक्ति को जान नहीं सकते, इम्पॉसिबल, हम अपने आप को ही नहीं जानते दूसरे को कैसे जानेंगे, तो हमको यह जानना है कि हमारे जो इंद्रिया है ये इंद्रिया महाचोर है, और यदि रोज हमने दिव्य रस का प्राशन नहीं कराया किया तो मन का ये हरण कर लेंगे, परंतु समाधिस्थ लोग जो होते हैं, जो 54वें श्लोक में अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि वो समाधिस्थ लोग किस प्रकार से बैठते हैं, अर्थात वो लोग किस प्रकार से अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, जब व्यक्ति बैठता है तो उसके इसके पहले भी इसकी चर्चा हुई, जो व्यक्ति बैठता है तो अपने सारे इंद्रियों को समेट लेता है, तो अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि हे कृष्ण बताओ कि जो समाधिस्थ होते हैं वो कौन से आसन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं कि वज्रासन में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं कि नीचे बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं कि टेबल पे बैठते हैं, अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है, कोई इतना साधारण प्रश्न नहीं है कि बस आगे बैठ गए, बैठते हैं अर्थात अर्जुन पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से वह व्यक्ति जो समाधिस्थ होता है, जो भक्त होता है, जो सत्य का पालन करता होता है, वो किस प्रकार से बैठता है, वो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, और यहां पे यह बात बताइए भगवान ने कि इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रख सकता है, किस प्रकार से, दिव्य रस का प्राशन करने से इंद्रिय नियंत्रित रहते, परंतु भगवान के मन में विचार आया कि अर्जुन ये तुरंत पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मान लो किसी ने नहीं किया दिव्य रस का प्राशन तो उसके उत्तर में फिर भगवान कह रहे हैं कि यदि वो इस प्रकार से नहीं बैठेगा जैसे शीत पद में बैठते हैं, जिस प्रकार से समाधिस्थ लोग बैठते हैं, शीत पद में लोग बैठते हैं, भक्त बैठते हैं, उसी प्रकार से यदि हम नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, हमारे मन का अपहरण हो जाएगा, किडनैप हो जाएगा, माइंड, सारे संसार, माइंड कंट्रोल, कॉन्सेंट्रेशन, हॉलम कंक्रो, कॉन्सेंट्रेशन, माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन, ध्यान, मन की एकाग्रता, इसके लिए कुछ भी एक ऑब्जेक्ट निकालते इसकी तरफ देखते बैठो बोलते मन एकाग्र हो जाएगा, परंतु इंद्रिय चंचल है,
हमारे जो पंचेंद्रिय वो चंचल है तो मन एकाग्र कैसे होगा? इंद्रिया इतनी चंचल है तो मन एकाग्र होगा क्या? केवल कोई ऑब्जेक्ट को, लाइट को देखते बैठे, ट्यूबलाइट को, किसी भी प्रकार के ज्योति को, ब्रह्म ज्योति को, ज्योति बता, तो मन एकाग्र नहीं होगा क्योंकि उसको किडनैप कर लिया इंद्रियों ने। और इंद्रियों को शांत करना है तो उनको दिव्य रस पिलाना पड़ेगा, और नहीं पिलाएंगे तो किडनैप हो जाएगा, मन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए अर्जुन के उस प्रश्न का भी इसमें और क्लियर भगवान उत्तर दिए हैं कि वो व्यक्ति कैसे बैठता है, तो वो व्यक्ति दिव्य रस पी के बैठता है। सीधा उत्तर तो ये है, कैसे बैठता है वो लोग, वो व्यक्ति तीर्थप्रज्ञ व्यक्ति दिव्य रस का प्राशन करके बैठ जाता है। अर्थात वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है दिव्य रस का प्राशन करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्थात वो क्या करता है, अपने मन का बहुत अच्छा स्ट्रांग पावरफुल सुदृढ़ अंगरक्षक बनता है, बिकम्स अ बॉडीगार्ड, अंगरक्षक बनता है। और इंद्रिय रूपी चोरों को किसी भी प्रकार से कोई भी स्थिति में मन को चुराने नहीं देता, दे कैन नॉट किडनैप द माइंड, मन को चुरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने मन का ही अंगरक्षक बॉडीगार्ड बन के बैठता है, जिसकी वजह से ये पांचों इंद्रियों की हिम्मत ही नहीं होती है मन को चुराने की। वो इतना पावरफुल होता है कि वो एकदम 24 आवर्स वॉच योर माइंड। ये सुना होगा आपने कभी, जो तत्वज्ञ लोग होते हैं वो बार बार बोलते हैं वॉच योर ईगो एंड माइंड। इधर दूसरे तीसरे को वॉच करने की जरूरत नहीं है, वॉच योर ईगो, अपने अहंकार और अपने मन के ऊपर आग लगाए रखो, अपने मन पे आग लगाए रखो। इधर उधर भागता है क्या, दौड़ता है क्या, अपने अहंकार को बार बार देखते रहो कितना बड़ा है, वॉच, निरीक्षण करो उसका, वॉच योर ईगो एंड माइंड। जो तीर्थ प्रज्ञ होते हैं वो इसी प्रकार से अपने मन और अहंकार को पूरी संपूर्णता वॉच करते रहते, मन को फिसलने नहीं देते, अहंकार को बढ़ने नहीं देते, इस प्रकार से वो लोग अंगरक्षक बने रहते हैं मन और अहंकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही तो सब कुछ है, ये मन यदि चाहे तो मोक्ष दे सकता है, मन यदि चाहे तो हमको बांध के रख सकता है पूरे जीवन बंधन में। तो मन ही सबका कारण है, बंधन या मोक्ष का कारण यदि कोई है तो वो है मन, है कि नहीं? मन को अच्छा लगता है तो हम करते हैं जो भी कोई बात है, मन को अच्छा नहीं लगता है तो हम नहीं करते हैं। सब कुछ जो निर्भर है किस पे निर्भर है, मन है। तो इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यही कारण है बंधन और मोक्ष का। तो बंधन कैसा है मन का, मन बंधन में कैसे डालता है कुछ? ये इंद्रिय क्या करते हैं मन को, ये इंद्रिय मन को विषयों की ओर ढकेलते हैं। क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा भव सागर है, इसमें अनेक विषय हैं। ये इंद्रिय क्या करते हैं, ये भयंकर समुद्र जिसमें क्रोकोडाइल, भयंकर विषारी सर्प और भयंकर विषारी प्राणी है, ये भवसागर। ये इंद्रिय क्या करते हैं, उस मन को इस भवसागर में दे धक्का, उस भवसागर में धक्का देते हैं और फिर उस भवसागर में और विषय वस्तु भी, बहुत सारे वस्तुएं भी हैं जो बहुत आकर्षक दिखती हैं। देखिए इंद्रिय क्या करते हैं, बाहर से मन को उस समुद्र में धकेलते हैं और उस समुद्र में कुछ आकर्षक विषय भी है, आकर्षक विषय वस्तुएं भी है समुद्र में। वो आकर्षक विषय वस्तुएं मन को क्या करती है, खींचती है। इंद्रिय क्या करते हैं, मन को धक्का देते हैं और उसके अंदर जो विषय वस्तुएं हैं वो क्या करती है, वो खींचती है। एक धक्का देता है, एक खींचता है, खींचातान चल रही है। तो बताइए मन किस प्रकार से विरोध कर सकता है, किस प्रकार से अपने आप को बचा सकता है, बचा सकता है। पांचों इंद्रिय मन को ढकेल रहे, दे धक्का कह रहे सुबह से, अरे बहुत ही अच्छा वहां पे सिनेमा लगा हुआ है, मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया है, बार 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 कह रहे। अर्थात ये जो आंख है, ये आंख बार बार मन को ढकेल रही है, धक्का दे रही है। कभी कभी जीवा, कभी कभी जीभ, कान बार बार मन को धक्के देती रहती है, पंचिंग जोर जोर से। कभी जीवा को, जीवा मन को पंच करती रहती है, धक्के देती रहती है, कहती है कि कितना अच्छा चाइनीज का गाड़ी है वो गटर पे खड़ा, बहुत अच्छा है, दे धक्का दे धक्का दे धक्का दे धक्का, मन को धक्के देती रहती है। फिर जैसा ही ये आंख के द्वारा वो देखा जाता है चाइनीज गाड़ी, आकर्षण हो जाता है, तो वो गाड़ी क्या करती है, क्या करती है, खींचती है, खींचती है, खींचती है, कहते अरे नहीं प्रभु जी, नहीं खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, ऐसा बोलते सी जीव और एक धक्का देती है, भिजू। फिर सोचते एक हाथ बार तो चल जाता है, फिर दूसरा विचार है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर वो गाड़ी में जो सजाया हुआ है अलग अलग कलर का दिखता है, फिर वो सारे कलर और सारे आइटम फिर खींचते हैं, कैसे बच पाएगा मन, एक धक्का देता है, एक खींचता है, डबल फोर्सिंग तनाव, डबल फोर्सिंग खिंचाव। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, क्या कर सकते हैं, बड़ी विकट परिस्थिति है, नहीं है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आंखों को सुंदर दृश्य चाहिए, कानों को मधुर ध्वनि चाहिए और नाक को सुगंध चाहिए, जीवा को अच्छा स्वाद चाहिए, सारी इंद्रियों को चाहिए ही चाहिए डिमांड। इसलिए भगवान इसमें समझाते हैं, देखो दिव्य रस का एक ग्लास पी लो, नहीं तो अभी बताता हूं ये सारे इंद्रिय क्या करने वाले हैं हमारे साथ, शांति से नहीं बैठने वाले हैं, मन को टॉर्चर कर देंगे, पूरा डिसफिगर, इतना टॉर्चर कर देंगे मन को कि उस खिंचाव के कारण मन टिक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से मन चाहे कितना भी नियंत्रित रखने का आप प्रयास कीजिए भौतिक दृष्टि से या जबरदस्ती से, विचार तो आएंगे ही, आएगी कि नहीं, कभी खाने का विचार, कभी अनेकों प्रकार के विचार, विचार तो आएंगे, मन को कितना भी जबरदस्ती कीजिए विचार आएंगे, उन विचारों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आज कोई भी व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं है। देखिए, देखते हैं आप, छोटे से बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल के, तो माता 8-10 साल के ने अभी तो बहुत ही छोटे बच्चों को हमने कई जगह देखा है, हमको कई माता पिता है बोले भी, एकदम छोटा बच्चा साल भर का भी नहीं होता है तो क्या बोलते हैं, अरे इसको बाहर की दुनिया में घुमाओ, इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, इसको ये चखाओ वो चखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये सब करो। हमने देखा है बचपन से, तो इतने छोटे उम्र में वो बच्चे के अंदर इतने सारे विचार आ जाते, इतने सारे वस्तुओं को देखता है, इतने सारे विषयों को देखता है, तो उसके विचार बनेंगे। थोड़ा ही बड़ा हो जाता है तो लाखों विचार उसके मन में आ जाते हैं, और जब इतने विचार आ जाते हैं तो व्यक्ति चंचल हो जाता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, बैठ नहीं सकता। एक ही सिचुएशन, एक ही रोज रोज अपने घर में क्या बैठे, इसलिए कभी ये कार्य करने के लिए, कभी वो कार्य करने के लिए, कभी सारे प्रकार के जितने भी ताप हैं, सारे तापों को, सारे प्रकार के अनर्थों का टेस्ट कर लेता है, सारे प्रकार के अनर्थों का टेस्ट कर लेता है छोटा सा बालक। इसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है? छोटा सा जब होता है तो माता पिता का प्रेम के बदले माता पिता बच्चे को बाहरी दुनिया में ट्रेन करते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बिना दिव्य रस का प्राशन किए हुए उसको दिव्य रस पिलाने का चेष्टा ही नहीं होता है, पहले से ही अनेकों प्रकार के अनर्थ सिखाए जाते हैं, और जब बड़ा हो जाता है तो विचारों का फ्लड आ जाता है, फ्लड, विचारों का फ्लड। कोई भी व्यक्ति देखिए, जिसको भी कल सुबह उठते से आप मिलोगे, उठते से कोई भी व्यक्ति होने दीजिए, उसके मन में लाखों विचार होंगे, बात तो आपसे कर रहे होंगे लेकिन मन में विचार लाखों। कोई भी व्यक्ति उठते से आप देखिए, हजारों लाखों विचार चल रहे हैं, और ये जो विचारों का फ्लड आता है तो इसके पहले उदाहरण हमने बताया, चर्चा की है, क्या हो जाता है, कोई नदी को यदि बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गई, क्या होगा, नदी में जब तक मर्यादा में जल बहता है तब तक तो पूरा हरा भरा रहता है, सुख समृद्धि रहती है दोनों किनारों की ओर, खेती बहुत अच्छा, खेत खलिहान, बड़ा आनंद समृद्धि का वातावरण होता है। परंतु उसी नदी में जब जल का स्तर बढ़ जाता है और बड़ा भयंकर बाढ़ आ जाती है तो सारे किनारे टूट जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो पूरे खेत को और पूरे फसल को तहस नहस कर देता है, पूरी समृद्धि को खत्म कर देता है ना, पूरा डिस्ट्रक्शन, विध्वंस हो जाता है। उसी प्रकार से मन में जब इतने सारे विचारों का बाढ़ आ जाएगा, इतने सारे विचार उत्पन्न हो जाएंगे, इतने सारे विचार आ जाएंगे तो बुद्धि रूपी किनारा टूट जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर कहते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर जाओ साइकियाट्रिस्ट के पास, जाओ इसके पास, जाओ उसके पास। परंतु मुख्य बात क्या है, दिव्य रस का टेस्ट नहीं किया। भगवान इसके रिएक्शन बता रहे हैं, दिव्य रस को टेस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, दिव्य रस को टेस्ट नहीं करोगे तो ये सब होगा, पूरा व्यक्तित्व विध्वंस हो जाएगा, पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन, लेकिन ऐसा सब हो जाएगा। तो इसलिए भक्त क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, भक्त दिव्य रस का प्राशन करके इंद्रियों पे नियंत्रण रख, इंद्रियों को चंचल नहीं होने देते हैं, और वो चंचल जब नहीं होते हैं तब मन शांत, परंतु ये इतनी आसान बात है। एक कैप्सूल खा लिया, हो गया सब दिव्य रस का प्राशन, सारी इंद्रिय कंट्रोल हो गई। क्या किया? एक सुपर कैप्सूल सुबह खा लिया। ऐसा हो सकता है? कितना भी पंच पकवान या जितना संसार में कॉन्टिनेंटल नहीं, क्या कहते हैं उसको, पूरा यूनिवर्सल, ऊपर के दुनिया में भी कोई डिश होगा तो वो सब लेके उसको भी यदि हम खाएंगे तो भी 5-6 घंटे के पश्चात फिर डिमांड होगी। देर इज नो सेटिस्फैक्शन, समाधान नहीं है। और इसलिए इंद्रिय जो है विषय भोगों में भागते रहते हैं। इतना आसानी से इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसके पहले के श्लोक में हमने देखा है विश्वामित्र का उदाहरण बताया है भगवान। इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर उसी उदाहरण को बताए हैं विश्वामित्र। संत कालिदास संस्कृत के महान, बड़े बड़े काव्य रचनाएं किए। इंद्रियों को नियंत्रित रखना कितना कठिन है इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपने ही आर्टिफिशियल ऊपरी ऊपरी प्रयास करने से इंद्रिय नियंत्रित होने वाले नहीं है। एकादशी के दिन बहुत पक्का उपवास करेंगे, लेकिन दूसरे दिन सुबह होते से ही पारण का जैसे ही टाइम हुआ क्या करेंगे? जितनी कल तपस्या की उससे डबल द्वादशी के दिन 56 भोग। दौड़ती है, एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाती है। एक दिन तपस्या के लिए पक्का उपवास निर्जल करने के लिए हमारे मन को कहेंगी तो दूसरे दिन 5 टाइम पंच पकवान खाएंगे। ये चंचलता है, बड़ी भयंकर दशा है। 9 बजे मीटिंग है, अभी कितना बज गया है? 9 बज गया, 5 मिनट कम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इंद्रियों का नियंत्रण ये मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है। और केवल यही मुद्दा, यही बात मनुष्य को प्राणी से अलग रखती है। बस जानवर से मनुष्य को केवल ये एक ही बात अलग रखती है। कौन सी? वो इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान के विषय में जान सकता है। बस इसी। और यदि वो ही नहीं है तो फिर क्या है? द्विपाद पशु, संस्कृत द्विपाद पशु, दो पैर वाला प्राणी। तो द्विपाद पशु होना नहीं है, इंद्रियों को नियंत्रित। संत कालिदास इतने बड़े महान कवि थे, संस्कृत के प्रकांड ज्ञानी थे। मैंने बहुत उनका चरित्र पढ़ा नहीं, पर थोड़ा बहुत ही सुना है। बहुत ही महाकवि की उपाधि उनको दी जाती है, परंतु उनके उस झोपड़ी के पास, कुटिया के पास, जो एक स्त्री झाड़ू लगाने के लिए आती थी, उस स्त्री की ओर वो आकर्षित हो गए। बताइए, संत महाकवि, संस्कृत के प्रकांड पंडित संत कालिदास। और फिर कुछ उसके पश्चात वो कभी किसी को दिखे नहीं, कभी भी किसी को नहीं दिखे। कहां चले गए? नो बड़ी बात, अनेकों उदाहरण है। पिछले समय शौबरी मणि का उदाहरण दिया, याद है आपको? शौबरी मणि सोचे कि विश्वामित्र तो जंगल में चले गए थे, और जंगल में तो तपस्या में अनर्थ हो सकता है कभी। स्त्री इंद्रदेव तो प्लान करते ही रहते हैं, तो जंगल में तो वो किसी भी मेनका वगैरह को भेज सकता है, पर पानी में किसको भेजेगा? इसलिए शौबरी मुनि यमुना के अंदर चले गए, पानी में, जल के अंदर समाधि करने लगे। लेकिन क्या हुआ? इंद्रियां इतनी प्रबल है, आंख उन्होंने कुछ देख लिया, मछली को देख लिया, फिश को, मत्स्य, और विचलित हो गए और फिर 50 राजकन्याओं से विवाह किया। मतदाता राजा की 50 कन्याएं थी, उन सभी से विवाह कर लिया। तो इस प्रकार से सभी के लिए, स्त्री हो पुरुष हो, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत डिफिकल्ट है। आर्टिफिशियली अपने ही प्रयास से ये रखा नहीं जाता है, जो रखता है उसके ये हाल हो जाते हैं। केवल अपने ही प्रयास से, केवल टेक्निक से, बहुत से लोग टेक्निक कहते हैं, भक्ति करने की क्या आवश्यकता है, टेक्निक देखो, टेक्निक क्या टेक्निक है, चौधरी मुनि से बड़ा किसी के पास टेक्निक होगा, जल में पानी में जाके जो साधना कर रहा है, इससे बड़ा कौन सा टेक्निक है संसार में ध्यान लगाने है कोई? आप चाहे सर नीचे करें, पैर ऊपर करके ध्यान करें, कुछ भी करें, पानी में जाके जो ध्यान करता है, इससे बड़ा ध्यान करने का कोई टेक्निक नहीं। वह भी व्यक्ति यदि डिस्टर्ब हो सकता है तो फिर सारे टेक्निक फेल है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान से और केवल टेक्निक से यह पॉसिबल नहीं। हरिदास ठाकुर देखिए क्या किया उन्होंने, रोज एक ग्लास, एक नहीं ज्यादा ही पीते थे, रोज दिव्य रस का प्राशन करते थे, रोज। उनको मारा गया 22 बाजारों में, चौराहे पे रख के, एक नहीं ऐसे अनेकों चौराहों पे रख के उनको मारा गया। क्यों नाम लेते हो भगवान का, मत लो नाम, बंद करो तुम्हारा जप, नहीं बंद करते हो, मार। इतना मारा, इतना मारा, तो भी वो हंसते रहे और पूछे कि आप लोग थक तो नहीं गए मार मार के। वो लोग प्रार्थना करने लगे, मारने वाले मुस्लिम राज्यकर्ता के सैनिक थे, प्रार्थना करने लगे कि हे हरिदास, हमने तुमको इतना मारा, इतना मारा, अभी तुम नहीं मरोगे तो ये राजा हमको मार देगा, तुमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम तो हंस रहे हो, पर अभी तुमको ऐसा ही कुछ भी नहीं हुआ तो ये राजा अभी हमको मार देगा, तुम मर जाओ। हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, तुमको तकलीफ होगी, मैं मेरी वजह से तुमको तकलीफ नहीं, किसी भी जीव को तकलीफ हानि नहीं होने दूंगा, इसलिए हरिदास ठाकुर अचेत हो। देखिए ये भाव है भक्त का। तो बिना भक्ति का ज्ञान बड़ा डेंजरस है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। केवल टेक्निक, टेक्निक से कोई फल फायदा होने वाला नहीं है, बिना भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। नहीं तो अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार के अट्रैक्शन हमको इस संसार में मिलते हैं और वो खींचते रहते, खींचते रहते, वो रस का प्याला हमारे पास आ जाता है, वो ग्लास यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन क्या करता है ये इंद्रिया, इंद्रिया क्या करती है, वो पास में गए कि एक धक्का दे देती है और फिर उधर विषय क्या करते हैं, खींच लेते हैं, एकदम पास में गया, छूट गया। धीरे धीरे बुधवार शुक्रवार के क्लास करने लगे, अच्छा होने लगा, जब एक दो चार माला करने लगे, बड़ा आनंद आने लगा, थोड़ा अब बस दिव्य रस को प्राशन करना ही था कि कोई रिश्तेदार मिल गए। मिल गए और क्या बोले, क्या अभी से कर रहे हो, क्या अपने आप को बंधन में बांध रहे हो, ये रिश्तेदार, ये धक्का दे दिया रिश्तेदार, इतना जोरदार धक्का भी दे दिया और खींच भी लिया, इतने बड़े भयंकर भव सागर में। अब वो बता रहा है कि इंद्रिय भोग करो, यही तो जीवन है, जैसे कि कुत्ता करता है, बिल्ली करती है, तो ऐसे ही हमने करना है। इस प्रकार से अब ये हमको सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन तो सभी का है, सभी ने संसार में रहना है, परंतु मनुष्य की तरह, न कि जानवर की तरह। इस श्लोक में भगवान ये कह रहे, जो लोग दिव्य रस का प्राशन नहीं करते हैं, है ना, जो लोग दिव्य रस का प्राशन नहीं करते हैं वो जानवर के जैसे, चूंक की इंद्रिया चंचल हो जाती है, मन का अपहरण कर लेती है और फिर मन जो चाहे वो करता है, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। नेत्र को क्या चाहिए, बस जो अच्छा दिखता है वो करो। पतिंगा, पतिंगा देखता है, देखा आप पतिंगा किसको कहते हैं? अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। हिंदी में जिसको पतिंगा कहते हैं, जो रात के समय जो आग पे आता है ना कीड़ा, एक प्रकार का दीपक होता है, दिया, दिए पे जो आते हैं पतिंगे, उसको पतिंगा कहते हैं। उस दीपक पे जो पतिंगा आता है वो क्यों आता है दीपक पे पतिंगा? बड़ा अच्छा दृश्य दिखता है उसको दूर से, कितना सुंदर दिया है, आहा क्या तेज है, बहुत ही सुंदर दीपक है। इस भाव से वो पतिंगा उड़ते उड़ते उसको अच्छा दिखता है, इसलिए वो दिए के इतने पास जाता है, उस ज्योत के इतने पास जाता है कि अंत में उसमें जल जाता है। क्यों? क्योंकि नेत्र को तृप्त करने की आसक्ति, आंखों को तृप्त करने की आसक्ति बड़ी भयंकर आसक्ति, तो पतिंगे जैसा हालत हो जाता है। लोग, मैं समझता हूं आज के संसार में करोड़ों लोग टीवी देखते हैं, क्यों देखते हैं और क्या लेते हैं उसमें? पहले तो क्यों देखते हैं, आंख को बहुत अच्छा लगता है, नहीं आंख को बहुत अच्छा लगता है इसलिए देखते हैं, और फिर जो कुछ भी देखते हैं उसके ऊपर विचार मंथन करते हैं, और विचार करने के बाद बहुत समय तक विचार करके विचार करते विचार करते विचार करते फिर इच्छा होने लगती है। मान लो आजकल टीवी पे तो ऐसी कोई भी विभत्स वस्तु नहीं है जिसकी एडवर्टाइज नहीं होती है। अल्कोहल, अनेकों प्रकार के ब्रांड का एडवर्टाइज दिखा, नेशनल मल्टीनेशनल लोकल जो भी है। अब देख देख के विचार 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 फिर इच्छा, पहले तो देखा और देखने के कारण इच्छा हो गई, और अब इच्छा और बढ़ गई और बढ़ गई, अब आसक्ति हो गई, अब जो कुछ भी दिखाया उसको पीना है, तो पतिंगे जैसा हालत हो गया। पतिंगा अग्नि में जाके मर गया उसको देखने के चक्कर में, इसी प्रकार से ये देखा और देखने के कारण अब पूरा जीवन उद्वंत हो गया कि नहीं? तो इसलिए नेत्र, इसको नियंत्रित रखना चाहिए, रोज भगवान का दर्शन करना चाहिए, रोज इस नेत्र से रोज भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के सामने, भगवान के समक्ष जब हम खड़े रहेंगे दर्शन के भाव से, तो हमारा आचरण सही शुद्ध हो जाएगा। भगवान के सामने दर्शन के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है? आचरण शुद्ध हो जाता है। फिर कान, बहुत ही अच्छा सुनने को चाहिए। मनुष्य का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी पता नहीं। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सुनना चाहते हैं, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है। जैसे हिरण है, हिरण को कैसे शिकारी मारता है पता है? शिकारी शिकार करता है ना, तो हिरण को कैसे मारता है? एक बहुत ही अच्छा मधुर ट्यून बजाता है, धुन, एक विशेष प्रकार का एक टेप रिकॉर्डर में धुन लगा के वहां रख देता है, और वो धुन बजती रहती है, दूर हिरण रहता है उसको सुनाई देता है, वो कान खड़े करता है, सोचता है कितना सुंदर म्यूजिक है, वहां बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है, कहां है कहां है, म्यूजिक की दिशा में रन, भागते 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 आता है उस संगीत की दिशा में जहां संगीत बज रहा है। एकदम उसके सामने शिकारी बाण लेके खड़ा है, लेकिन उसको दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं है उसको शिकारी। वो बाण चलाता है, बाण ले अभी चलाएगा तो भी ये अपना म्यूजिक सुनते सुनते और आखिरकार शिकारी का बाण चल जाता है। ऐसी हालत आजकल यंग जनरेशन की ज्यादातर है, वो मोबाइल का कान में लगा देते हैं और उन्हीं की दुनिया में रहते हैं, वो सुनते रहते हैं, पता नहीं क्या लाभ है उसे सुनते रहते, कई सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए, किसी का एक कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, कुछ 10-12 लोग उधर अमरावती साइड गए थे कुछ इंडस्ट्रियल टूर के लिए, और वहां जा गए और कोई ट्रेन जो बॉम्बे की ओर आने वाली थी उस ट्रेन में चढ़ने लगे, और ट्रेन 10-20 मिनट के लिए हॉल्ट ट्रेन का था, तो एक उसने का बहादुर बच्चा बोगी के ऊपर चढ़ गया। उसके पास तो कुछ तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें जिससे फोटो भी निकाल सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, ऐसा सब जितने भी अनर्थ है वो सब कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट था। वो इंस्ट्रूमेंट उसने कान को लगाया हुआ था, उसका स्पीकर वायर कान को लगाया हुआ था और हाथ में वो था फोटो खिंचवाना चाहता, नीचे ऊपर से नीचे का फोटो। उस बोगी पे चढ़ गया और ऊपर है हाई टेंशन लाइन इलेक्ट्रिक वायर, जैसा ही ये उस इंस्ट्रूमेंट को क्लिक किया, क्योंकि सुन क्या रहा था, डांस कर रहा था सुन के, वो उसी भाव में था जो हिरन कौन से भाव में थी, वाह वाह बड़ा आनंद आ रहा है, मधुर सुगंध संगीत सुनने को मिल रहा है, उसी प्रकार से वो सुन रहा था। परंतु वो जो हाई टेंशन लाइन होती है उसके चारों दिशाओं में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, आकर्षण शक्ति, जैसे ही इसने उसके इंस्ट्रूमेंट का बटन दबाया फटाक से उस वायर ने उसको खींच लिया और चिपक दिया इलेक्ट्रिक वायर। पिछले साल की बात अमरावती स्टेशन में, कितना भयानक थी, कर क्या रहा था, म्यूजिक सुन रहा था, अरे म्यूजिक नहीं सुनता जो अच्छा लगता है कान को, नहीं सुनता तो थोड़ा बुद्धि काम करती कि पास नहीं हाई टेंशन लाइन, परंतु उसी में धुन है इंद्रिय तृप्ति, कानों को तृप्त करने के चक्कर। फिर जीवा, जीवा तो हम सब जानते हैं, बहुत बार हो चुका है, उसके बारे में क्या बोले, जीवा मछली को कैसे पकड़ते हैं, फिश कैसे पकड़ते हैं, उसमें एक खिला जैसे काटा होते हैं वो डालते हैं, पर केवल काटा डालते हैं क्या, उसको क्या लगाते हैं, हाँ उसको कुछ तो लगाते हैं खाने का आइटम एकदम टेस्टी, जो मछली देखते थे, अरे वाह वड़ा पाव, अरे वाह पानी पूरी, अरे वाह चाइनीज, जैसे ही खाने को दौड़े फटाक से काटा खींच लेता है जीवा को, जीव भी अटक जाती है मछली की इस प्रकार से मछली को पकड़ते हैं, जीवा पे नियंत्रण नहीं। यदि मान लो कोई बहुत ही अच्छी चीज नीचे आई है पानी में और मछली सोचे अभी तक तो नहीं आ रही थी, अभी क्यों आ रही, कुछ धोखा है मुझे नहीं चाहिए तो नहीं मरेगी। यदि हम ये सोचे कि ये कुछ है ये धोखा है, क्यों मेरे शरीर के लिए आवश्यकता नहीं, ये कोई प्रसाद थोड़ी है, क्यों खाऊं मैं, तो हम बच गए और खा लिया तो फिर अब क्या बताएं आप सभी को, हम सभी को बहुत अच्छा अनुभव है आप वो फ्लैशबैक कर सकते हैं सारे एक्सपीरियंस हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर आता है सुगंध, वो भ्रमर रहता है, भ्रमर कमल के पुष्प पे बैठता है, उसको पुष्प का इतना जोरदार सुगंध आता है, वो सुगंध के कारण बैठा ही रहता है कमल के पुष्प, उठता ही नहीं, बैठा ही रहता है, बैठा ही रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, सूर्यास्त का समय होता है लेकिन फिर भी उठता नहीं क्योंकि सुगंध इतना जोरदार आ रहा है, बहुत बढ़िया सुगंध है, बैठा है। अंत में संध्या समय पे वो पुष्प बंद हो जाता है, सुगंध के चक्र चक्कर में जान गई, मर जाता है। तो इसी प्रकार से सुगंध अर्थात अनेक प्रकार के अट्रैक्शन, खिंचाव, अनेक प्रकार के खिंचाव। सोचना चाहिए, कभी भी कोई भी बात करने के पहले सोचना चाहिए, मैं खींचे जा रहा हूं क्या? कोई मुझे खींच रहा है क्या? नो बोलना सीखिए, नहीं नहीं नो बोलना सीखिए। इंद्रिया बेलगाम है, परंतु जब हम नो नहीं बोलना सीखेंगे तो नियंत्रण कर पाएंगे। यदि हम नहीं बोलना नहीं सीखेंगे, बहुत से लोग कहते हैं मन मानता नहीं है, क्या करें? तो मन यदि नहीं मानता है और कुछ करने के लिए आपके पास है नहीं, तो ये मन आपको सीधा खाई में ले डूबेगा, पूरा खाई में ले जाएगा, फिर क्या करेंगे? हरे कृष्ण कृष्ण तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं कि बिना भक्ति के ज्ञान अच्छा नहीं। यदि भक्ति नहीं और केवल ज्ञान ही ले रहे हैं तो वो बहुत ही डेंजरस बात है। ज्ञान और भक्ति के विषय में इस श्लोक में भगवान बहुत ही विशेष और बहुत ही सीधी सीधी बात बता रहे हैं। भक्ति नहीं है, यदि दिव्य रस का प्राशन नहीं किया अर्थात भक्ति नहीं किए हो तो खाई में जाके डूब सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ, शौभद्र मुनि, विश्वामित्र, कालिदास, असंख्य लोगों के साथ हो भी रहा, पता नहीं कितने तो कैसे कितने लोग अपने आप को बहुत ही बड़े वैरागी समझते हैं, बोलते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों के साथ आ सकते हैं। बड़े बड़े दो दो साधु हैं, बड़े बड़े हैं लेकिन एक ही बात, अहंकार, केवल अहंकार के कारण ये लड़ मर रहे हैं, जबरदस्त लड़ाई हो रही है साधु। क्यों? क्योंकि ज्ञान है भक्ति में, भक्ति अर्थात प्रेम, प्रेममय सेवा, ये है ही नहीं। ये प्रेममय सेवा है ही नहीं तो अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार ने तो किसी को नहीं छोड़ा है, रावण को नहीं छोड़ा है जो इतना बड़ा तपस्वी था, हिरण्यकश्यप को नहीं छोड़ा है अहंकार ने, अहंकार ने अभी तक इतिहास में किसी को भी नहीं छोड़ा है, हमको क्यों छोड़ेगा? हम कोई स्पेशल है? कोई विशेष है हम? कोई अस्तित्व नहीं, हमको क्यों छोड़ेगा अहंकार? और ज्ञान से अहंकार आ जाता है, भक्ति से अहंकार नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति का जो दिव्य रस का प्राशन करोगे तो भक्ति प्राप्त, प्रेम प्राप्त होगा, अहंकार नष्ट होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम देखते शास्त्र में श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का शास्त्र में उदाहरण है, निर्वस्त्र होकर घूमते थे सुखदेव गोस्वामी, परंतु किसी के भी मन में कोई भी अनर्थ उनके प्रति नहीं होता था क्योंकि वो परम हंस थे। भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान के गुणों के विषय में उनको पूरा पूरा अनुभव था, अनुभूति थी, केवल पढ़ नहीं है। हम तो ऐसे तो किसी को बोलो तो कहते हमने सब पढ़ रखा है, लोग कहते हैं सब पढ़ रखा है, पढ़ के रख दिया है, उसको आचरण कुछ नहीं, पढ़ रखा है सब, परंतु उसको आचरण में लाना चाहिए, पढ़ने से लाभ नहीं होता है, उसको आचरण में लाना होगा। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी है श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद महाराज। हाँ, कितना प्रभुपाद महाराज की कितनी बड़ी विशेषता है कि कहीं पे भी बिना डगमगाए भगवान के नाम का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में उन्होंने किया। कोई एक बात तो प्रभुपाद के विषय में बोले, कोई एक बात, देख सकते हैं कि भक्ति। ऐसे तो बहुत ज्ञानी है, ध्यानी ज्ञानी लोग हैं जो बड़े बड़े संत हो गए, प्रभुपाद जी के पहले भी हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी की विशेषता क्या थी? जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया वो दूसरे कोई कर नहीं पाए या किया नहीं, कारण क्या है? बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ था, परंतु क्या नहीं था? भक्ति। प्रभुपाद ने कृष्ण प्रेम बांटा है, ज्ञान तो दिया पर कृष्ण प्रेम मुख्यत्व बांटा है, और उसके कारण प्रभुपाद जी पूरे विश्व में लोगों के आचरण को, इतने भयंकर गाय खाने वाले लोगों को चारों वेदों का उपदेश देके उनके जीवन में बदल कर दिया है, लाखों लोगों को। क्यों? केवल भक्ति के कारण। इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति होना बहुत आवश्यक है, बिना भक्ति के ज्ञान हो नहीं सकता। यदि कोई भी व्यक्ति इस भूल में हो कि मैं जप नहीं करूंगा, मैं भागवतम नहीं पढ़ूंगा, मैं लीला कथा नहीं समझूंगा, मैं केवल पढ़ लूंगा सब और मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं फलाना जानता हूं, मैं ठिकाना जानता हूं, परंतु मैं जप नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? तो शौगुरी मुनि जैसा है, कभी भी कुछ भी खतरा हो सकता है। कालिदास, शौगुरी मुनि। तो इसलिए भक्ति पहले, जप अर्थात दिव्य रस का प्राशन, वो बहुत आवश्यक है। भगवान इस श्लोक में वही बात बार बार कि दिव्य रस का प्राशन करो। दिव्य रस का प्राशन नहीं करोगे तो हम हिरण बन सकते हैं, हम पतिंगा बन सकते हैं, हम क्या बन सकते हैं, और मछली बन सकते हैं, हाँ भौरा बन सकते हैं। ये जो इन लोगों के साथ हुआ है, ये सब हम लोगों के साथ होने वाला है, ऐसा इस श्लोक में भगवान ने बोला। यदि हम भक्ति रस अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करें तो क्या होगा? तो ये सब होगा। तो इसलिए सब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान बोल रहे 2.60 में। आप घर पे जाके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, सही तो एक बार और श्लोक, मेरा ये बात नहीं है बोलना, मैं तो ठीक है, भगवान ने बोला है सब। सोचिए इतने बड़े भगवान, तीनों लोगों के स्वामी ऐसे कहते हैं, ब्रह्मांड नायक, वो इस बात को सीक्रेट को बता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री भगवान की जय। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है मनोहर श्री कृष्ण। क्या नाम है? मनोहर। मन मनाभो मद भक्तो, भगवान श्लोक में भगवद गीता में इसीलिए कहते हैं, इसलिए उनका एक नाम मनोहर है। जैसे भगवान व्रज में मक्खन चुराते हैं ना, ऐसे ही हमारा मन यदि मक्खन के जैसा शुभ्र हो, मृदु हो, सॉफ्ट हो, शुभ्र हो, शुद्ध हो, तो भगवान उसको चुरा लेंगे। और जब भगवान उसको चुरा लेंगे तो इंद्रियों की क्या हिम्मत की उसको किडनैप करे। हमारे मन को यदि भगवान चुरा लेंगे, जो कि उनका स्वभाव है चोरी करना, यदि वो चुरा लेंगे तो क्या इंद्रिया किडनैप करेंगे हमारे मन को? तो क्या करना चाहिए? हमारे मन को शुद्ध रखना चाहिए, मन को शुभ्र रखना चाहिए, मृदु रखना चाहिए, मक्खन के जैसा, ताकि भगवान उसको चुरा ले। भगवान
यदि हमारे यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमारे मन को चुराए तो उसके लिए रोज भगवान के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, भगवान को आपका मन दिख जाएगा। दिखना तो पड़ेगा ना, दिख जाएगा। जैसे ही दिख जाएगा मक्खन के जैसा लगा तो भगवान चुरा लेंगे। जब भगवान उसको चुरा लेंगे तो इंद्रिया वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकते, इंद्रिया अपनी जगह रह जाएगी, मन आनंद में रहेगा भगवान की सेवा में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मनोहर भगवान श्री कृष्ण की। तो आने वाले 28 तारीख को जन्माष्टमी, सबको बताए तो जन्माष्टमी है, अर्थात भगवान के जन्म का उत्सव। हैप्पी बर्थडे। जब हम हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है तो कितने धूमधाम से मनाते हैं, मनाते हैं कि नहीं? सभी मनाते हैं आजकल तो, एक टाइम पे केवल छोटे बच्चों का ही मनाते थे, पर अभी तो सभी का मनाते हैं, है कि नहीं? तो ये जो भगवान है, सारे ब्रह्मांड के नायक, जिनकी वजह से हम सब, हमारा सबका अस्तित्व है, जो हमको नित्य शक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं, सब कुछ देते हैं। हमारे संबंधी जो होते हैं वो तो केवल हमको कुछ ध्यान रखते हैं, खाना पीना देते हैं, बस इसलिए हम उनका बर्थडे मनाते हैं। परंतु ये तो हमको नित्य सब कुछ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं। अब उनका बर्थडे आ रहा है 28 अगस्त ना, 28 अगस्त। तो आप क्या करेंगे उस दिन? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उस दिन हम सभी भगवान का जन्म दिवस मनाएंगे और बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे, ताकि सारे जो जीव है उन सारे जीवों को इसका लाभ मिले, है कि नहीं? है कि नहीं? बराबर कि नहीं? सारे जीवों का लाभ, सारे जीवों को इसका लाभ मिले। इसलिए ये महोत्सव को हम मनाएंगे। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? महोत्सव अर्थात उत्सव, और उत्सव अर्थात उत्साह, उत्साह। जीवन में वही सब घिसी पिटी बातें हो रही है कि नया कुछ है नहीं, लेकिन सब डर नहीं। परंतु भगवान के जन्म तिथि का जो महोत्सव होता है, ये जो महोत्सव होता है बहुत उत्साह देने वाला होता है। एक वर्ष भर हमारा उत्साह कायम रहता है। तो ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े उत्साह, जबरदस्ती नहीं, क्या बोल गए इसलिए आ गए, ऐसा नहीं, बड़े उत्साह। क्योंकि जन्म तिथि के दिन जिसका जन्म दिन होता है बड़े अच्छे मूड में होता है, पता है आपको, है कि नहीं? उस दिन बहुत अच्छे मूड में होता है वो। तो भगवान का भी जन्मदिन अष्टमी को है, 28 तारीख को, उस दिन भगवान बड़े अच्छे मूड में होंगे। आप थोड़ा भी उनके लिए करोगे ना, बोले अरे वाह इसने क्या किया, अरे इसने कुछ नहीं बस ध्यान रखा, प्रसन्न हो गए, अच्छे मूड में। उस दिन कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका कि कितनी भक्ति करते, कितने माला करते, क्या करते, कुछ नहीं होगा। उस दिन हैप्पी हैप्पी मूड, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी मूड। उस दिन थोड़ी भी सेवा करेंगे भगवान के स्मरण में रह जाएंगे, हो सकता है उसी दिन भगवान आपका मन चुरा ले, तो इंद्रिया आपके मन के ऊपर हावी नहीं होगी। तो इसलिए उस दिन अवश्य आइए, बहुत सेवा है कमला विहार स्पोर्ट्स क्लब में। यह महोत्सव हम मनाएंगे भगवान के
जन्म तिथि पे सभी को आमंत्रित करेंगे, जितने भी आपके परिचित हैं सभी को आमंत्रित कर सकते हैं और उनको भी एक आप अवसर प्रदान कर सकते हैं कि आइए भगवान का दर्शन कीजिए। पता नहीं भगवान उनका मन चुरा ले, बोल नहीं सकते आपके माध्यम से, तो इसलिए अवश्य आइए। बहुत सारी सेवाएं हैं। अब एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो किसी के घर में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है मान लो, तो उस घर के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको बोलने की भी फुर्सत नहीं होती होती है? किसी के घर में बर्थडे है, घर में 5 मेंबर है, कोई ये कर रहा है, कोई किसी को बोलने को फुर्सत नहीं है। एवरीबडी इज बिजी सेवा में। क्यों? क्योंकि उस उत्सव को वो, उस दिन को वो यशस्वी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी प्रकार से ये भगवान की सेवा अर्थात ये हमारे सबके घर का उत्सव है, हमारे अपने घर का उत्सव है। हम सब लोग उस दिन सेवा में पूरी तरह से एंगेज रहेंगे, जैसे अपने घर के कोई प्रोग्राम में हम एंगेज रहते हैं पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है, बहुत सारे लोग आएंगे, तो क्योंकि अपने घर का फेस्टिवल है इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से अनेकों जो भी सेवाएं हमको प्राप्त होती है वो सारी सेवाओं को बड़े प्रेम से और बड़े उत्साह से भगवान की प्रसन्नता के लिए उस सेवा को निभाएंगे बहुत अच्छी तरह से। इसके कार्ड भी आए हैं, इसमें पूरा विस्तृत वर्णन होगा। लगभग 7:30 बजे उस दिन हमारा प्रोग्राम शुरू होगा जन्माष्टमी का, 28 तारीख को शाम को 7:30 बजे कीर्तन होगा, ड्रामा होगा और डांस ड्रामा भी होगा, जिसमें भगवान की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं बताई जाएगी, डांस करते करते ड्रामा उसमें बताया जाएगा, किस प्रकार से भक्त होते हैं, किस प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में संबंध होता है। प्रवचन होगा, भगवान का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, भगवान क्यों जन्म लेते हैं, हमने भगवान के साथ कैसे संबंध रखना चाहिए, इस पूरे विषय पे, विशेषकर भगवान का रूप कैसा है, ये बड़ा प्रश्न होता है, भगवान दिखते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उस दिन सब पता चलेगा। वैसे तो सबको पता है परंतु भगवान के नाम और रूप के ऊपर उस दिन प्रवचन में चर्चा होगी, तो भगवान को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास होगा और इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर भगवान तो हमारे लाला है, छोटे से इतनी देर बैठेंगे नहीं, वो छोटे से हैं, तो उनको हम झूले में झुलाएंगे, है ना, क्योंकि बैठ नहीं पाएंगे इतनी देर छोटे से लाला, तो उस दिन झूले का भी प्रोग्राम रहेगा। अब लाला है बहुत छोटे, भूख लगती है प्रभु जी, है कि नहीं, हमको 9:30 बज गए कि भूख लगती है, वो तो छोटे से है लाला, तो उनको भी भूख लगती है, इसलिए 56 भोग का भी आयोजन है। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से बहुत ही बड़ी बर्थडे पार्टी है, बहुत ही भव्य दिव्य स्तर पे यह जन्म तिथि को हम मनाएंगे। आप सभी बहुत उत्साह से आइए, इसमें देखिए अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, लगभग 7-8 हजार लोगों का प्रसाद होगा, 1000 लोगों के आसपास लोगों का प्रसाद होगा, तो प्रसाद सेवा है। फिर कितने हजार लोग उस हॉल में बैठेंगे, तो सब ठीक से बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे, किसको कोई कमी है, किसको कोई प्रॉब्लम है, किसको चेयर चाहिए, तो इस प्रकार से उनको पब्लिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, वह भी एक सेवा है, उससे भी भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो केवल आपका मन देखते रहते हैं उस दिन। फिर चप्पल स्टैंड से लेके तो बहुत बहुत अनेकों प्रकार की सेवाएं हैं, प्रसाद सेवा है, प्रसाद में 10-15 डिवोटीज चाहिए जो भक्तों को भगवान का प्रसाद, प्रसाद देना अर्थात प्रसाद अर्थात कृपा, प्रसाद का हम वितरण करेंगे अर्थात आपके आपके माध्यम से उन जीवों को कृपा प्राप्त होगी भगवान। तो इस प्रकार से प्रसाद की सेवा है, बहुत सेवा है, इसलिए हमको बहुत उत्साह चाहिए। उत्साह है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उस दिन जितने भी आपके इंपॉर्टेंट काम है वो आज ही कर लीजिए, कल ही कर लीजिए। 28 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो कल और परसों सैटरडे से लेकर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो भगवद गीता में कहते हैं, सारा संसार और सारे कर्म मेरे से ही आते हैं, मुझे छोड़ के कोई काम करने जाओगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं बहुत गड़बड़ करने वाला हूं। वो लाला है भी मानेगा नहीं। काम करने गए किसको छोड़ के, जिससे सारे काम उत्पन्न होते हैं उसको छोड़ के फलाना ठिकाना महत्व का काम करने गए तो लाला बड़ी गड़बड़ कर देंगे। फिर मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं भगवद गीता की बात बता रहा हूं। यत करोति यदस्नाति, भगवान बोल रहे ऐसे ही कर्म जो मुझे अर्पण कर सकते हो वही करो, और जिस दिन भगवान की सेवा करना है वही नहीं करें तो दूसरे ऐसे कौन से कर्म है जब आप अर्पण कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी से हम एवरी फ्राइडे एवरी वेडनेसडे हम एक ही बात आपको बताते रहेंगे कि 28 तारीख की छुट्टी लेना है, बड़े उत्साह से भगवान की सेवा करना है, बड़े उत्साह से सारे जीवों को जितने लोगों को आप बुला सकते सभी को कृपा देना, आपके माध्यम से भगवान की कृपा देना है। तो इतनी सारी सेवाएं हैं और हमारे घर का फेस्टिवल है, हम सब एक ही परिवार के मेंबर है और हमारे घर पे बहुत बड़ा फेस्टिवल है, महोत्सव। तो हमको जब फैमिली मेंबर को एक फीलिंग रहता है हमेशा जब उनके घर पे कोई प्रोग्राम होता है, कौन सा फीलिंग होता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। वो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं जब उनके परिवार में कुछ होता है प्रोग्राम। ये हमारा बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तो हमको क्या करना है? हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है, जिम्मेदार समझना है अपने आप को। ये नहीं कि प्रभु जी ने बोला है फलानी सेवा है 28 तारीख को 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, क्या है प्रभु जी, अच्छा ये ठीक है कर दूंगा। ये तो साधारण काम हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कैसे करना है, कैसे? वो भगवान है, सारे पूरे यूनिवर्स के पूरे ब्रह्मांड के नायक है, उनका बर्थडे है तो कितना एक्यूरेसी के साथ करना होगा, कितना परफेक्शन के साथ उसको करना होगा, कितना जिम्मेदारी के साथ करना होगा, टाइम पास के साथ ऐसे नहीं करना है। तो कौन सी सेवा आप ले सकते हैं? सेवाएं मैंने रफली आपको 4-5 प्रकार की सेवाएं बताई है, चप्पल स्टैंड चप्पल सेवा है, प्रसाद सेवा है, क्राउड मैनेजमेंट सेवा है, साउंड सिस्टम, वहाँ माइक वगैरह रहेगा, वहाँ पे 2 भक्त चाहिए, कभी कुछ साउंड कम हो गया बढ़ाओ, कम करो, एसी कम करो, फैन लगाओ, लाइट बंद करो, ये सब उसके लिए 2 भक्त चाहिए। जिसमें आपका बहुत ज़्यादा रुचि है वो सेवा आप उत्साह से कीजिए, जिम्मेदारी से कीजिए। तो सब करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत प्रकार की सेवा होती है, तन मन धन सभी प्रकार से। कोई धन की सेवा, मान लो कोई भक्त मिल गए, वो कहेगी जन्माष्टमी के लिए हम इतना धन देना चाहते हैं, तो उनको धन के माध्यम से उनकी सेवा को सेवा में जोड़िए। तो बहुत सारे भक्तों को हम प्रसाद दे रहे हैं, बहुत बड़ा आयोजन है, तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है, भक्तों की भी आवश्यकता होती है और सभी के मन की भी आवश्यकता होती है, हा? तो तन मन और धन, जिस प्रकार से जो कोई भी सेवा जिम्मेदारी से उत्साह से हम कर सकते हैं उसके लिए अवश्य आ पाइए। और आज से ही अपना सेवा का सेवा के लिए नाम माता जी के पास आप लिख दीजिए। अभी प्रवचन के पश्चात जो भी आप सेवा करना चाहते हैं वो नाम माता जी के पास रख दीजिए। फिर अर्च्य विग्रह हो गए तो उस समय पूजा होगी, सब बहुत सारी सेवाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रोपाद की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। सेवा के विषय में कोई और प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपना नाम आप लिख दीजिए अभी माता जी के पास नंबर के साथ। और आज से जितने भी प्रवचन हो गए बुधवार शुक्रवार एक भी मिस मत कीजिए। कुछ इनोवेटिव आइडियाज, जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं घर के, तो कुछ नई नई हर साल उसी टाइप से नहीं करते हैं, कुछ नई नई आइडियाज। तो आप कुछ, आपको कुछ लगता है विशेषकर ऐसा करना चाहिए प्रभु जी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो आप अपनी आइडियाज के साथ भी आ सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। आप कुछ करना चाहते हो जन्माष्टमी के लिए, कोई नई कल्पना है आपके मन में, उसको भी हम सोचेंगे सब मिलके। तो सारे प्रवचन में अब आइए और उत्साह से, जिम्मेदारी से, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है सेवा के विषय में? बोलिए एक प्रश्न। जो इन्फॉर्मेशन जमा कर रहे हो उसका यदि आचरण में नहीं लाते हो तो समझना चाहिए कि वो भक्ति नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन ही है। आपने कोई आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त की है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज का युग आईटी का युग है, तो आपने आईटी की तरह एक आईटी का कोई विचार, कोई आध्यात्मिक आइडिया या इन्फॉर्मेशन लाई है, तो कैसे पता चले कि ये भक्ति है या ज्ञान है? ये प्रभु जी का प्रश्न है। तो कोई इन्फॉर्मेशन जब आपने लाई है तो उस इन्फॉर्मेशन का आचरण कीजिए, और आचरण करके उसका जो सार है आचरण का, वो सार ये है कि भगवान की सेवा। जो जानकारी आपने प्राप्त की उसके कारण एक तो पहले आप आचरण में उसको ला रहे हैं, और वो आचरण में ला रहे हैं जिसके कारण सेवा कर। तो जब तक आचरण और सेवा नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती। भक्ति अर्थात प्रेम। प्रेम, हम किसी से प्रेम करते कैसे पता चलेगा? एक पति पत्नी है, पति दिन भर से काम करके शाम को 7-8 बजे घर पे आते 8 बजे, और पत्नी कहती है प्रभु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, बहुत प्रेम करती हूं, बस सुबह से बर्तन पड़े थे उसमें जरा मांझ लेना। तो ये प्रेम है? बस थोड़ा सा 2-4 चपाती बेलना था उतना जरा बेल देना, मैं भी दुखी हूं। तो ये प्रेम है? प्रेम है कैसे पता चलेगा? प्रेम की परीक्षा क्या है? अनुभव कैसे होगा प्रेम है कैसे होगा? सेवा कोई व्यक्ति जैसी माता होती है अपने बालक का इतना ध्यान रखती है, इतनी सेवा करती है, बोलने की जरूरत नहीं है कि उसका वो प्रेम करती है बालक के साथ, क्योंकि सेवा से दिख रहा है प्रेम करती है। तो सेवा से पता चलता है कि भक्ति कितनी है अर्थात प्रेम। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेके सेवा कुछ भी नहीं करते हैं तो समझना चाहिए ये भक्ति नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रही है कंप्यूटर के जैसा, निर्जीव पत्थर के जैसा। ध्यान है केवल, परंतु भक्ति तभी कही जाएगी जब वो लेके उसको उसका ट्रांसफॉर्मेशन सेवा में होगा। क्लियर? हरे कृष्ण।